इस्लामी क्रांति और समाज।
श्रोताओ, इस्लामी क्रांति और समाज की दूसरी कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस कार्यक्रम में विश्व की दूसरी क्रांतियों के मुकाबले में ईरान की इस्लामी क्रांति की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे।
संसार की अन्य क्रांतियों की तुलना में ईरान की इस्लामी क्रांति की एक विशेषता उसका भू राजनैतिक होना है। ईरान मध्य पूर्व व पश्चिम एशिया में स्थित है। ईरान की इस्लामी क्रांति से पहले इस क्षेत्र में कभी कोई क्रांति नहीं आई थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ईरान की इस्लामी क्रांति मध्य पूर्व क्षेत्र की पहली क्रांति थी। यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर विदेशियों का अधिक प्रभाव है। भू राजनीतिक होने का एक बिंदु यह है कि मध्य पूर्व में इस्लामी क्रांति एक ऐसे देश में आई जो संसार में तेल और गैस के बड़े निर्यातकों में से एक था। गैस और तेल का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अपना अलग प्रभाव है। ईरान में तेल और गैस की मौजूदगी के कारण ही बड़ी शक्तियों की ईरान पर नज़र है।
ये कहा जा सकता है कि 28 मुर्दाद 1332 हिजरी शमसी के विद्रोह, 1329 को तेल के राष्ट्रीयकरण तथा ईरान में तेल से ब्रिटेन की भूमिका के समाप्त होने का ये एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। इसके अतिरिक्त सन 1970 के दशक में तेल के मूल्यों में वृद्धि ने तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया था। ईरान की इस्लामी क्रांति पुनः तेल के मूल्यों को बढ़ा सकती थी, जिसका विश्व की अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व है। ये विषय जहां एक ओर ईरान की भू राजनीति को प्रदर्शित करता है, वहीं पर यह भी बताता है कि औद्योगिक देशों को ऊर्जा की आपूर्ति के कारण ईरान की तत्कालीन राजशाही व्यवस्था को बड़ी शक्तियों का विशेष समर्थन प्राप्त था। विशेष बात यह है कि ऐसी परिस्थितियों में ईरान में इस्लामी क्रांति का आना वास्तव में महत्वपूर्ण है।
संसार की अन्य क्रांतियों की तुलना में ईरान की इस्लामी क्रांति को इसलिए भी विशिष्टता प्राप्त है कि यह संसार की पहली धार्मिक क्रांति थी। इस क्रांति ने ईरान में धर्म को जीवित करने के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित किया। ईरान की इस्लामी क्रांति के आगमन से पहले भी संसार के विभिन्न क्षेत्रों में इस्लामी आंदोलन आरम्भ हुए, जिन्होंने तानाशाही और वर्चस्ववाद से मुक्ति के लिए आवाज़ भी उठाई। इन आंदोलनों का या तो दमन कर दिया गया या वे दम तोड़ गए। इसका मुख्य कारण यह है कि हर वह आंदोलन जो सशक्त आइडियोलॉजी का स्वामी हो और लोगों को अपने साथ एकजुट कर सके, वह सफल हो सकता है।
ईरान की इस्लामी क्रांति ने धार्मिक मूल्यों के साथ अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर दिया था। यही कारण है कि ये एक ऐसी वास्तविक क्रांति के रूप में ईरान में प्रकट हुई। इस्लामी क्रांति ने ईरान के भीतर राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधारों को ही बदल कर रख दिया। ईरान की इस्लामी क्रांति के बारे में शहीद उस्ताद मुर्तजा मुतहरी कहते हैं कि यह ईश्वरीय दूतों के आंदोलनों की ही एक शाखा है। वे कहते हैं कि इस्लाम के उदय काल की क्रांति जैसा है। अपनी यह किताब पीरामूने इनकलाब इस्लामी में शहीद मुतहरी कहते हैं कि इस्लाम के आरंभिक काल की इस्लामी क्रांति जहां धार्मिक क्रांति थी, वहीं पर वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति भी थी। इसमें आज़ादी, भेदभाव से दूरी, समाज में समानता और न्याय की स्थापना जैसी बातें थीं। उन सभी बातों में से जिनकी ओर हमने संकेत किया, कोई भी इस्लाम से अलग नहीं है। इस क्रांति की एक विशेषता ये रही कि वो न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक क्रांति थी, बल्कि इसने राजनीति को भी अपने साथ रखा। उदाहरण के लिए, इस क्रांति में जहां पर आध्यात्म की बात कही गई है, वहीं पर स्वतंत्रता की भी मांग दिखाई देती है।
बहुत से लेखकों ने लिखा है कि संसार की अन्य क्रांतियों की तुलना में ईरान की इस्लामी क्रांति की एक विशेषता उसका धार्मिक होना रहा है। जलाल दारक्षे का कहना है कि ईरान की इस्लामी क्रांति फ्रांस और रूस की महाक्रांतियों के बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि उन क्रांतियों में धर्म और राजनीति को अलग अलग किया गया था, जबकि ईरान की इस्लामी क्रांति में धर्म को आधार बनाया गया। बाद में इसी धर्म ने ईरान की इस्लामी क्रांति को सफलता दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई।
नेकी केडी का मानना है कि ईरान की जनता ने अपने समाज से उस पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से देश में परिवर्तन के लिए कदम उठाया, क्योंकि ये संस्कृति उन पर थोपी गई थी। वे चाहते थे कि उनके देश में इस्लामी शिक्षाओं के आधार पर नई व्यवस्था बने। ईरान में शताब्दियों से इस्लाम का बोलबाला था और वहाँ पर धर्म की जड़ें बहुत ही गहरी थीं। ऐसे में उस विचारधारा का प्रचार जो धर्म को समाज से अलग करती हो कभी सफल नहीं हो सकती थी। इसी अधर्मी सोच के मुकाबले में इस्लामी क्रांति ने ये प्रयास किया कि धर्म को हर क्षेत्र में जीवित करके देश को धार्मिक पहचान दी जाए।
इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की इस्लामी क्रांति में राजनीति और अर्थनीति की भूमिका है, किंतु बहुत से विचारकों का यह मानना है कि वह चीज़ जो लोगों को सड़कों पर लाई और जिसके कारण लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर तत्कालीन राजशाही व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया, वह थी इस्लामी शिक्षाएं और धार्मिक मूल्य।
इसके अतिरिक्त इस क्रांति ने वास्तव में संसार में धर्म के आदर्श को पेश किया। उदाहरण स्वरूप एमिल डोर्केम तथा मैक्स के दृष्टिकोणों के अनुसार जब बुद्धिमानी का चलन होता है तो धर्म समाज में एक किनारे पहुंच जाता है। ऐसे में बुद्धिमानी उस स्थान को ले लेती है। ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता से इस दृष्टिकोण को कड़ी चुनौती मिली, क्योंकि ये क्रांति पूर्ण रूप से धार्मिक शिक्षाओं पर आधारित थी। ईरान की इस्लामी क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया कि संसार के राष्ट्र केवल सेकुलर बनने के मार्ग में ही कदम आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि ऐसा भी देखा गया है कि कुछ देशों ने पहले सेकुलर होने के लिए कदम आगे बढ़ाया और बाद में वे धर्म की ओर उन्मुख हुए। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि इस्लामी क्रांति मार्क्सवादी विचारधारा को कंडम करती है। मार्क्सवाद के अनुसार धर्म अफीम है और शासक वर्ग इसको समाज के निचले वर्ग पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए प्रयोग करता है।
इस प्रकार पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि संसार की अन्य क्रांतियों के मुकाबले में ईरान की इस्लामी क्रांति की विशिष्टता उसका धार्मिक शिक्षाओं पर आधारित होना था। इसने समाज को धर्म की ओर बढ़ाया। यह क्रांति ऐसे समय में आई थी जब बहुत से क्षेत्रों में धर्म कमज़ोर हो चुका था या फिर उसे जानबूझकर कमज़ोर किया जा रहा था। कहीं कहीं पर तो धर्म को बिल्कुल ही समाप्त करने की कोशिश हो रही थी। ईरान की इस्लामी क्रांति जहां जनता पर जनता के शासन की पक्षधर है, वहीं वह पूरी सृष्टि पर ईश्वर की सत्ता पर भी पूर्ण विश्वास रखती है।
संसार की अन्य क्रांतियों की तुलना में ईरान की इस्लामी क्रांति की एक अन्य विशेषता तत्कालीन आर्थिक व सैन्य परिस्थितियां हैं। ये क्रांति एक ऐसे देश में आई जो आर्थिक एवं सैनिक शक्ति की दृष्टि से बहुत ही मजबूत था। पश्चिम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसको क्षेत्र के रखवाले के नाम से जानते थे। तेल के मूल्यों में एकदम से हुई वृद्धि के कारण तत्कालीन पहलवी सरकार आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत थी। उसने पश्चिम से अत्याधुनिक हथियार खरीदकर स्वयं को अधिक से अधिक सशक्त बनाने की कोशिश की थी। तत्कालीन शासन ने न केवल देश के भीतर बल्कि देश के बाहर भी स्वयं को शक्तिशाली प्रदर्शित करने के प्रयास किए थे, जिसका उदाहरण ओमान था। ओमान के शासक सुल्तान काबूस के अनुरोध पर इस देश के दक्षिण पंथी पृथकतावादियों से निपटने के लिए पहलवी शासन के सैनिकों ने जफ्फार नामक स्थान पर पहुंचकर पृथकतावादियों का मुकाबला किया था। पहलवी शासन के पास 4 लाख से अधिक सैनिक थे। उस समय वो मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सेना थी। विशेष बात यह है कि ऐसी शक्ति के मुकाबले में इस्लामी क्रांति सफल हुई थी।
यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि जब फ्रांस और रूस में महाक्रांतियाँ आई तो आर्थिक दृष्टि से यह देश कंगाली की कगार पर पहुँच चुके थे। दूसरी ओर सैन्य दृष्टि से भी वह बहुत कमज़ोर हो चुके थे, क्योंकि उनको युद्धों में लगातार पराजय का स्वाद चखना पड़ा था। सन 1789 में फ्रांस की सरकार देश की जनता के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं रह गई थी और रूस की तत्कालीन सरकार भी प्रथम विश्व युद्ध के कारण समस्याओं में घिर चुका था और वह राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से अस्थिरता का शिकार बन चुकी थी।